अमिताभ बच्चन और प्राण, ये जोड़ी बहुत जबरदस्त है। और आपको पता है अमिताभ की पहली सुपरहिट फिल्म थी जंजीर, और उसके अहम किरदार में थे प्राण साहब। प्राण साहब के साथ उनकी एक और सुपरहिट फिल्म 1984 में रिलीज हुई, फिल्म का नाम था शराबी। फिल्म की शुरुआत होती है एयरपोर्ट से, जहां विकी के पापा अपने चार्टर्ड प्लेन से उतरते हैं। बहुत ही बिजी बिजनेसमैन है, उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। मुंशी जी, जो विकी का बचपन से ख्याल रखते हैं, वो राय साहब से कहते हैं कि उन्हें विकी के बारे में कुछ बात करना है। राय साहब कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, और वो चले जाते हैं। अगले ही दिन राय साहब मुंशी जी को बुलाकर उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने विकी को इसी उम्र में शराबी बना दिया है। तो मुंशी जी कहते हैं कि ये सारी गलती राय साहब की है। फ्लैशबैक में वो बताते हैं कि जिस आदमी के पास मरती हुई अपनी बीवी को देखने का वक्त नहीं था, वो अपने बेटे के बारे में क्या सोचेगा। राय साहब की बीवी ने मुंशी जी से मरते वक्त विकी का ख्याल रखने के लिए कहा था।
राय साहब, सच बहुत कड़वा होता है। जिस उम्र में बच्चों को दूध हजम नहीं होता, उस उम्र में आपने विक्की को ब्रांडी पिलवानी शुरू कर दी। वो छींकता था तो आप कहते थे दो चम्मच ब्रांडी पिला दो, वो रोता था तो आप कहते थे दो चम्मच ब्रांडी पिला दो, सिर्फ इसलिए कि आपके कारोबार की मीटिंगों में खलल ना पड़े। राय साहब, आज वही दो चम्मच ब्रांडी के शराब की बोतल बन गए। ये तो मेरा प्यार है राय साहब, जिसकी वजह से आपकी औलाद सही सलामत है, वरना वो मासूम कब का इस दुनिया।
अपनी जबान और आवाज पर काबू रखिए मुंशी फूलचंद, हमें ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं। और ये भी ना समझिएगा कि विकी आपके बगैर नहीं रह सकता, हम उसके लिए 50 नौकर रख सकते हैं।
क्यों नहीं राय साहब, 50 क्या आप सैकड़ों नौकर रख सकते हैं। अब आपको मेरी जरूरत भी क्या है, सोचा था कि मरने से पहले इस घर से नहीं जाऊंगा, लेकिन आज एहसास हुआ कि मैंने गलत सोचा था। वो अमर रात कपूर जिसका कि मैं दुनिया में अकेला ही दोस्त था, आज दौलत की दुनिया में भटक गया है। आपकी दौलत की हवस ने मुझे नौकर बना दिया, दोस्त से नौकर बना दिया। ये तो विक्की का प्यार था जिसकी वजह से मैं आज तक यहां रुका हुआ था। अब मैं सारे बंधन तोड़ दूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता।
और अंत में विक्की अपनी कसम देकर उन्हें रोक लेता है।
एक दिन सक्सेना, जो राय साहब के दफ्तर में काम करता है, बताता है कि राय साहब ने एक बस्ती पर बुलडोजर चढ़वा दिया है, पर एक औरत वहां से जा ही नहीं रही है। मुंशी जी विकी को लेकर जब वहां पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि अमीना बाई यानी वो औरत मर चुकी है, पर उसका एक अनाथ छोटा बच्चा है। उसे रोते देख विकी कहता है कि उसे रोने की कोई जरूरत नहीं।
क्या बात है भाई?
अमीना भाई गुजर गई।
राम 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 राम, मैं तो उससे उसका झोपड़ा छुड़ाने आया था, ये तो दुनिया ही छोड़ गई।
अम्मीजान उठो ना, अम्मीजान स्कूल लेके चलो ना, अम्मीजान स्कूल लेके चलो ना, अम्मीजान अम्मीजान उठो ना, अम्मीजान अम्मीजान उठो ना, अम्मीजान।
बस बस रो मत, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, हम तुम्हें स्कूल ले चलेंगे। क्या नाम है तुम्हारा?
अरनवर।
मुंशी जी, हम इसे अपने साथ ले चलें?
ले चलो बेटा, ले चलो।
आओ।
भाई साहब, ये कुछ पैसे रखिए इनकी मैयत के लिए।
सर, आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा।
कैसा प्रॉमिस?
आप अनवर को इस बात का कभी पता नहीं चलने देंगे कि उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कौन देता है।
बहुत अच्छी बात है, नहीं बताएंगे।
और मुंशी जी, अभी ये बात डैडी को नहीं बताएंगे?
नहीं बताएंगे बेटे, बिल्कुल नहीं बताएंगे।
विकी और अनवर बड़े हो जाते हैं। विकी शराब के नशे में हमेशा चूर रहता है। अनवर अपने टीचर से पूछता है कि वो कौन नेक इंसान है जिसने उसके लिए इतना कुछ किया, पर वो नहीं बताते। इधर चार मवाली लड़के रास्ते पर खड़े होकर विकी को शराबी कहते हैं। विकी वापस आता है तो सभी डर जाते हैं, पर विकी उन्हें दोस्त बना लेता है और शराब पिलाता है। फिर शुरू होता है ये गाना।
जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, जहाँ चार यार महफिल रंगीन जमे, महफिल रंगीन जमे दौर चले धूम मचे, मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार, जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, जहाँ चार यार।
Thank you.
गाने के खत्म होते ही अनवर, जो कि एक पुलिस ऑफिसर बन चुका है, वहाँ आता है और जब विकी से पूछता है कि दोनों की मुलाकात इसी जगह क्यों होती है, तो अनवर कहता है कि उसे लगता है यहाँ कोई नेक इंसान का साया है। अनवर पूछता है कि वो अपने किले जैसे हवेली को छोड़कर यहाँ मवालियों के संग क्या कर रहे हैं। विकी बताता है कि ये मवाली नहीं उसके दोस्त हैं और किला रहने के लिए नहीं बल्कि लड़ने के लिए बनाई जाती है।
एक रात एक कसाई हॉस्पिटल के सामने डॉक्टर के सामने अपने बेटे के लिए मिन्नतें कर रहा है, पर डॉक्टर कहता है कि बच्चे के ऑपरेशन के लिए काफी पैसा चाहिए।
क्या बात है बहन?
भाई साहब, पता नहीं हमारे बच्चे को क्या हो गया है, डॉक्टर साहब कहते हैं इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा।
साहब, हमारा एक ही बच्चा है साहब, हमारा सहारा है, इसके बिना हम नहीं जी सकते साहब। ये डॉक्टर साहब कहते हैं इसके ऑपरेशन के लिए बहुत पैसा चाहिए, पेशे का एक कसाई हूँ साहब, मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊं?
कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब? लाख, दो लाख, दस लाख, आप मुझे खर्चा बताइए। पैसे की वजह से बच्चे की जान नहीं जानी चाहिए। ये मेरा कार्ड है, बिल मेरे ऑफिस भिजवा दीजिएगा।
एक मामूली कसाई के लिए लाखों की बात है? अरे भाई, ये रईस ज्यादा तो बड़े काम की चीज है, इसे अपने 99 के चक्कर में लेना ही पड़ेगा।
सही बात।
सामने खड़े दो लफंगों के लिए ये बहुत अचरज की बात होती है और वो विकी को अपने जाल में फंसाने के लिए कुछ प्लान करते हैं। अगले दिन सुबह राय साहब बहुत खुश होते हैं, उन्हें 30 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। और इधर विकी को मुंशी जी उठाते हैं और उठते ही वो शराब मांगता है। सामने राय साहब आते हैं, राय साहब विकी को इम्पोर्टेंट मीटिंग में आने के लिए कह के चले जाते हैं।
विकी बार में बैठा शेर पढ़ रहा है और चमचे वाह वाह कर रहे हैं
कि जिगर का दर्द ऊपर से कहीं मालूम होता है कि जिगर का दर्द ऊपर से नहीं मालूम होता
है। बाबा के बच्चे, ए विकी के चमचो, तुम इसके घटिया और बेहुदा शेरों पर दांत दे देकर उसे गुमराह कर रहे हो।
हाँ, हमारा शेर और घटिया?
घटिया? अरे इतना घटिया कि शेर ने शायरों की घटिया घटी कर दी है। ख्याल घटिया, कलाम घटिया, ना रदीब ना बदन, चले हैं शायर बनने, पर गुरदार ये शेर और शायरी छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं।
क्या बात कर रहे हैं मुंशी जी? देखिए, हमारी जिंदगी का तंबू 3 बंबुओं पे खड़ा हुआ है, शायरी, शराब और आप। एक भी बंबू हटाएंगे तो हमारा तंबू उखड़ जाएगा।
विकी पूछता है वजन कहाँ से लाया जाए। मुंशी जी बताते हैं कि उसके लिए एक खूबसूरत लड़की का होना जरूरी है। तभी वहाँ वो दो लफंगे आ धमकते हैं। उनमें से एक नटवर शाह विकी से कहता है कि वो एक ऑर्गेनाइजर है और विकी से रिक्वेस्ट करता है कि
हुजूर, हम इस शहर में एक मशहूर कलाकार मीना जी का एक शो कर रहे हैं। अगर आप उस शो में चीफ गेस्ट बनकर आ जाएं तो हमारे शो को 4 चांद लग जाएंगे।
भाई मुझे क्यों पिटवाने के चक्कर में, आप चांद तो एक ही होता है, ये बाकी के 3 आप कहां से लाएंगे? खैर, आप ये मीना जी क्या लगते हैं?
सरकार उनका सारा धंधा मैं ही देखता हूँ।
धंधा
जी? मेरा मतलब उनके सब शो मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ, ऑर्गेनाइजर। और ये रही मीना जी की कुछ तस्वीरें एल्बम में, एक नजर मार लीजिए।
ठीक है मुंशी जी, अब आप कह रहे हैं तो हम चले जाते हैं।
मैंने कब कहा है?
जी अगर नहीं कहा तो फिर कह दीजिए प्लीज।
भाई मैं कौन हूँ सब कहने वाला, इसकी अपनी मर्जी है।
ठीक है, हम आ जाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त होगी।
जी फरमाइए।
वो हम मुंशी जी से कह देंगे।
थैंक यू सर।
शुक्रिया।
यहाँ शो शुरू होता है इस गाने के साथ, पर गाना शुरू होने के पहले मीना देखती है कि पूरा हॉल खाली है। विकी बताता है कि उसने सारे टिकट्स खरीद लिए हैं। मीना कहती है कलाकार पैसे का नहीं तालियों का भूखा होता है। मीना नाराज होकर विकी को कोठे पर जाने को कहती है, पर बाद में खुद ही तैयार हो जाती है। विकी कहता है कि उसकी एक ताली से 1000 तालियों की गूंज सुनाई देगी और दोनों ये गाना गाते हैं।
तुझे नौलता मंगा तेरे ओ सैया दीवाने तुझे मैं तुझे मैं तुझे गले से लगा लूंगी ओ सैया दीवाने मुझे अंगिया खिला तेरे ओ सैया दीवाने तुझे मैं तुझे मैं तुझे सीने से लगा लूंगी ओ सैया दीवाने मुझे नौलता मंगा तेरे ओ सैया दीवाने।
लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, तुमने भी शायद ये ही सोच लिया। हाँ लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ।
गाने के आखिर में मीना देखती है कि विकी घुंघरू बजाने में इतना खो गया है कि उसके हाथों से खून निकल रहा है, पर उसे पता ही नहीं, नजरों ही नजरों में प्यार हो जाता है। और विकी एक शेर पढ़ता है, मुंशी जी कहते हैं उसके शेर में अब वजन आने लगा है, बात और बढ़ेगी तो वजन और बढ़ेगा। मीना के घर नटवर तोहफा लेके आता है।
गुड मॉर्निंग मीना जी।
अरे आप?
नमस्ते।
आप सुबह सुबह यहाँ कैसे?
वो क्या मीना जी, विकी बाबू ने आपकी कला से खुश होकर आपके लिए तोहफा भेजा है।
कौन विकी बाबू? वही शराबी जिसकी कल रात तुम तारीफ कर रही थी।
हाँ बाबा वही। अच्छा मीना जी मैं चलता हूँ, आओ आड़ो।
मीना जी आपके गीत के बोल अनमोल थे, उनके जवाब में इस करदान का नाचीज तोहफा कबूल कर लें तो हमें बहुत खुशी होगी। वो खुशी जिसके बारे में कभी सुना तो जरूर था, कल देख भी लिया और आज उसी खुशी को हासिल करने की तमन्ना कर बैठे। हमें उम्मीद है कि आप कदरदानी की हिम्मत अफजाई करेंगे। आपका एक शराबी।
नटवर मीना के घर आके उसे बहकाने की कोशिश करता है कि वो अगर चाहे तो विकी से बहुत कुछ हासिल कर सकती है, पर मीना साफ मना कर देती है कि वो एक कलाकार है और धोखा देना उसके लिए मुमकिन नहीं। नटवर चला जाता है।
राय साहब के ऑफिस पहुंचते ही वो देखते हैं कि सारे कर्मचारी वहीं बैठे हैं। दरअसल वो ऑफिस के बाद भी विकी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते हैं। विकी आते ही सबकी मुश्किलें हल कर देता है, किसी के माँ के इलाज के लिए तो किसी की बेटी के शादी के लिए दिल खोल कर पैसे देता है। नथुलाल जिसकी मूछें बहुत बड़ी है पर कद बहुत छोटा है, विकी के पैर पकड़ लेता है, पर विकी मजाक में कहता है कि मूछें हो तो नथुलाल के जैसी हो वरना नहीं।
ये इतनी दबी हुई आवाज क्यों मिस्टर लोबो, व्हाट इज योर प्रॉब्लम?
छोटे मालिक हमारी मदर बहुत सीरियस है, डॉक्टर बोला कि बड़े डॉक्टर से ऑपरेशन कराओ। हम ये बात कई बार बड़े मालिक से
बड़े बड़े मालिक बड़े मालिक से क्यों तुम ऑपरेशन कराओ?
कहां से कराएगा सर, डॉक्टर 20,000 रुपए मांगता है, हम अपनी अखिल आई का फंड जमा करेगा तो 20,000 रुपए जमा नहीं कर सकता।
मिस्टर लोबो तो इसमें मुंह लटकाने की क्या बात है, अपने अपनी मदर से जाके बोलो कि अभी उसका सन जिंदा है, वो ट्रीटमेंट कराएगा। सक्सेना साहब
जी
देखिए मिस्टर लोबो को 40,000 रुपए दे दीजिए। लोबो तुम जाओ ट्रीटमेंट करवाओ अपनी माँ का।
थैंक यू सर।
लेकिन अपनी माँ से बोलना कि वो जो तुम्हारा लॉर्ड है ना उससे हमारे लिए दुआ मांगे।
यस सर।
तुम्हारी माँ हमारे लिए दुआ मांगेगी तो हमें ऐसा लगेगा कि हमें दुनिया मिल गई।
यस सर।
हमें दुनिया मिल गई तो हम सारी दुनिया के सामने खड़ा होकर के बोलेगा कि फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमन, मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना।
मीटिंग में जाते ही विकी का सब मजाक उड़ाते हैं। विकी भी सभी डायरेक्टर्स को खूब बुरा भला कहता है और सभी चले जाते हैं। राय साहब बहुत नाराज होते हैं। विकी उन्हें समझाता है कि वो सिर्फ अपने डैडी का प्यार चाहता है, पर राय साहब के पास जज्बातों का कोई मोल नहीं। विकी अपने मन की बात कह रहा है पर जब वो घूमता है तो देखता है कि राय साहब जा चुके।
मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता, आज तुमने मेरा बहुत नुकसान कर दिया। मैंने तुम्हें जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए बुलाया था और तुम हो के यहां पर।
बचपन से लेकर आज तक सिर्फ बिजनेस मीटिंग के लिए तो आपने मुझे बुलाया डैडी। जब से मैंने होश संभाला मुझे याद नहीं पड़ता कि बिजनेस के अलावा भी आपने मुझे किसी बात के लिए बुलाया हो। बुलाया आपने?
तुमने होश संभाला ही कब था? एक लेबल की तरह शराब की बोतल से जो चिपके तो आज तक अलग ना हो सके। तुमने जिंदगी में शराब पीने और हंसने के अलावा और किया ही क्या है?
शराब की बोतल पे अगर मैं लेबल की तरह चिपक गया हूं डैडी, तो इस लेबल को चिपकाने वाले आप हैं। और जहां तक हंसी का सवाल, मैं आपको बता दूं डैडी की आज तक मैं अपनी जिंदगी में कभी हंसा नहीं हूं। मैं तो दुनिया की खोखली हंसी पर कह कह लगाता रहा हूं, आपने तो दूर से सिर्फ उन कहकहों की आवाज सुनी है, कभी कई बाकर के उन कहकहों में बंद छलकते आंसू नहीं देखे।
ये कह कहे आंसू जज्बात, ये बेकार और नाकारा लोगों की बातें हैं। मेरे पास इन चीजों के लिए फुर्सत नहीं है। और फिर तुम किस बात पर आंसू बहाते हो? कौन सा सुख नहीं है तुम्हारे पास? क्या कुछ नहीं दिया तुम्हें?
हां डैडी, आपने मुझे वो सब दिया जिसे बाजार से खरीद के घर में सजाया जा सकता है, मगर वो सुख कभी नहीं दिया जिसे एक दिल में सजाया जा सके।
मीटिंग से बाहर आते ही बहुत से लोग विकी से मिलने आते हैं और कहते हैं राय साहब उनके झोपड़े तोड़ रहे हैं। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 2 दिन में सारी बस्ती खाली करने को कहा है। विकी सक्सेना से पूछता है कि जमीन किसके नाम है। सक्सेना कहता है उसके नाम। विकी कागजात मंगवा कर बस्ती में सबके सामने जाकर उसे जला देता है। अगली सुबह राय साहब बहुत नाराज होते हैं। विकी कहता है कि समंदर से थोड़ी सी पानी निकाल ली जाए तो वो सूख नहीं जाता। नाराजगी में भी राय साहब याद दिलवाते हैं कि कल उसका जन्मदिन है।
अगले दिन जन्मदिन का जश्न चल रहा है। नत्थूलाल पूरे ऑफिस के स्टाफ की ओर से विकी को शराब की एक बड़ी बोतल गिफ्ट करते हैं और वो बताता है कि विकी को नत्थू की मूछें बहुत पसंद है, इसीलिए अब सारे स्टाफ ने वैसी ही मूछें रख ली है। विकी को इंतजार है मीना का और मीना का वो कीमती हार गायब है। मीना एक नकली हार पहनकर वहां जाने का फैसला करती है। विकी मीना के इंतजार में ये गाना गाता है। तभी मीना वहां पहुंचती है और दोनों मिलकर खूब नाचते गाते हैं।
इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की।
पार्टी के बाद मीना बताती है कि वो महंगा हार खो गया है। विकी कहता है कि वो तो नकली था। जब मुंशी जी उससे पूछते हैं कि उसने झूठ क्यों बोला, तो विकी कहता है कि मीना के आंसू उस हार से ज्यादा कीमती हैं। मीना सब सुन लेती है। विकी वहां से पुलिस स्टेशन जाता है जहां उसकी मुलाकात अनवर से होती है। अनवर पूछता है कि आखिर ऐसी कौन सी कीमती गर्दन है जिसके लिए विकी इतना परेशान है। तभी वहां मीना आ जाती है और कहती है कि वो विकी को अब तक समझ नहीं पाई। विकी अनवर से कहता है कि यही वो कीमती गर्दन है जिसमें वो कीमती हार था।
नटवर मीना के घर जाकर उसके पिता को धमकाता है कि वो मीना के चेहरे पर तेजाब डाल देगा। तभी मीना वहाँ पहुँच जाती है और नटवर की असलियत पिता के सामने रख देती है। नटवर को वहाँ से भगा देती है और अपने पिता से कहती है कि उसको टीवी में नौकरी मिल गई है और कल ही उसका पहला शो है टीवी में। मीना ये गाना गाती है।
दे दे प्यार दे, दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे हमें प्यार दे, दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे हमें प्यार दे। दुनिया वाले कुछ भी समझे होंगे प्रेम दीवाने, जहाँ भी जाए तुझे पुकारे ताकि प्रेम तराने। दे दे प्यार दे, प्यार दे रे हमें प्यार दे, दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे हमें प्यार दे।
गाना सुन के विकी सीधे मीना के घर की ओर चल पड़ता है। वहाँ कुछ गुंडों से उसका पता पूछता है जो विकी का चेन, घड़ी और बटुआ सब छीन लेते हैं। और विकी पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला कर वही गाना गाता है और साथ देते हैं कुछ बैंड बाजे वाले।
मीना
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 हम बंदे हैं प्यार के मांगे सबकी खैर हाँ अपनी सबसे दोस्ती नहीं किसी से बैर
बहन वाले भाई साहब एक मिनट क्या है कि हमारी मीना यहाँ कहीं ऊपर रहती है हमें उसका पता मालूम नहीं आप थोड़ा बाजा बजाएंगे हैं पैसे बाद में एक दो तीन चार
दे प्यार दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे 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 प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे दुनिया वाले कुछ भी समझे हम हैं प्रेम दीवाने जहाँ भी जाए तुझे पुकारेगा के प्रेम तराने दे दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे ओ दे दे प्यार 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 दे दे हमें प्यार दे।
गाना खत्म होता है तो मीना और विकी दोनों प्यारी प्यारी बातें करते हैं। बाद में विकी बार में जाकर उन गुंडों की जम के पिटाई करता है और सारी चीजें वापस ले लेता है। वहां उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो उसे मीना का रुमाल लाकर देता है। विकी उसे अपना पूरा बटुआ दे देता है और कहता है कि वो मन लगाकर पढ़े। अनवर हीरे का हार ढूंढ लेता है और उस चोर को भी वो पकड़ कर ले जाता है। राय साहब विकी की शादी के लिए स्वयंवर करवाते हैं। वहाँ बड़े बड़े घरों की कन्याएं आती हैं पर आपस में लड़ पड़ती हैं। विकी उनका मजाक उड़ाता है। राय साहब बहुत नाराज होते हैं जब विकी बताता है कि उसे मीना से प्यार है तो वो कहते हैं कि एक नाचने वाली इस घर की बहू नहीं बन सकती। तभी वहाँ मीना आती है और विकी उसे बुरा भला कह देता है। वो चली ही जा रही थी कि राय साहब उसे बुलाते हैं ऊपर। राय साहब भी उसे कड़वी बातें कहते हैं। मीना को उनकी बातों का बहुत बुरा लगता है और वो शहर छोड़कर जाने का फैसला करती है।
राय साहब इलेक्शन मीटिंग में खड़े हैं और उनके दोस्त पब्लिक को बताते हैं कि वो उन्हें वोट दे, पर विकी वहां आकर चिल्ला चिल्ला कर कहता है जो अपने एक बेटे को नहीं संभाल सकता वो इतने लोगों को क्या संभालेगा।
ये झूठ बोलता है। एक औलाद तो संभाल नहीं सके, करोड़ों मुंह बोली औलाद संभालने निकले हैं। मुझे देखिए, मैं हूं इनकी इकलौती औलाद। बचपन से जो शराब में डुबोया तो आज तक डगमगा रहा हूं। मेरी जितनी उम्र है उतने मिनट भी नहीं बिताए इन्होंने मेरे साथ। आप लोगों को प्यार क्या खाक देंगे? ऐसा नहीं कि इनके दिल में प्यार नहीं है, प्यार है, बहुत प्यार है, लेकिन सिर्फ दौलत के लिए। ये इंसान नहीं है, ये तो मशीन है। ऐसी मशीन जो सिर्फ नोट छापती है और नोट खाती है, बस और कुछ नहीं।
रास्ते में अनवर उससे मिलता है और शाम की दावत देता है क्योंकि आज उसके लिए एक बहुत ही खास दिन है। शाम की महफिल में विकी ये गाना गाता है।
मंजिलों पे आके लुटते हैं दिलों के कारवां, कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती है प्यार की। मंजिलें अपनी जगह है,
रास्ते अपनी जगह, मंजिले अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे।
विकी वापस जाने लगता है तो अनवर उसे कहता है कि वो उसका घर देखे। विकी जैसे ही उसके घर के अंदर जाता है वो चौंक जाता है क्योंकि वहाँ मीना उसका इंतजार कर रही होती है। दोनों एक दूसरे की बाहों में समा जाते हैं।
जैसे ही विकी वहाँ से बाहर निकलता है एक लड़की उसके कार में आकर और उसके साथ करीबी दिखाती है। नटवर उन दोनों की तस्वीर खींच लेता है और अगले दिन अखबार में छपवा देता है। विकी के पूछने पर मीना बताती है कि वो लड़की नटवर की रखेल है।
घर पर राय साहब विकी से कहते हैं कि वो चाहता था कि वो उसे बेदखल कर दे, तो आज वो पेपर से रेडी है। दरअसल वो पेपर में निकले तस्वीर से बहुत नाराज थे। विकी तुरंत पेपर पर साइन कर देता है। मुंशी जी और विकी दोनों एक टूटे फूटे मंदिर में पहुंचते हैं। वहाँ एक बेवड़े का छूटा हुआ देसी ठर्रा पीकर विकी सो जाता है। ये मुंशी जी से देखा नहीं जाता और वो सुबह सुबह विकी को छोड़कर पैसा कमाने के लिए निकल पड़ते हैं, पर उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो लड़का विकी को ये खबर देता है। विकी भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर कहता है मुंशी जी के बचने की कोई उम्मीद नहीं।
मुझे अकेले छोड़कर मत लौट आइए मुंशी जी, मुंशी जी लौट आइए, मैं दोबारा आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा मुंशी जी, मुझे मुझे यतीम बना के मत जाइए मुंशी जी, लौट लौट आइए मुंशी जी,
विकी नाराज होकर रोता हुआ राय साहब के मीटिंग में जाता है और कहता है कि उसके बाप की मौत हो गई और वो चाहता है कि वो अपने दोस्त फूलचंद की अर्थी को कंधा दे दे, पर राय साहब कहते हैं वो बिजी हैं। विकी चला जाता है पर वो कहता है कि विकी उनके लिए मर चुका है और वो उनकी चिता पर आग देने भी नहीं आएगा।
मुंशी जी की चिता को आग लगाने के बाद मीना और विकी बहुत दुखी हो जाते हैं। नटवर और गोवर्धन प्लान बनाते हैं। नटवर उस कसाई जिसके बेटे की एक दिन विकी ने मदद की थी उसके लड़के को उठवा लेता है और नटवर कसाई से कहता है कि उन किडनैपर्स ने उसे भेजा है कि अगर वो अपने बेटे को जिंदा देखना चाहता है तो उसे मीना का खून करना पड़ेगा।
राय साहब विकी के बिना उसकी यादों में खो जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो मुंशी जी की तस्वीर के सामने जाकर माफी भी मांगते हैं, यहाँ तक कि वो शराब भी पीना शुरू कर देते हैं। उन्हें अपने बाप होने का एहसास होता है।
गोवर्धन दास अपने लोगों को भेजता है ताकि वो राय साहब को बेवकूफ बनाकर उठा कर ले आए। इधर वो कसाई उन लोगों को सबूत दिखलाता है कि उसने मीना को मार डाला है और अपने बेटे को वापस पा लेता है। वो दारू के अड्डे वाला लड़का विकी को खबर देता है कि मीना का कत्ल हो चुका है और वो लोग बार बार नटवर शाह का नाम ले रहे थे। विकी नटवर और उसके साथियों को बहुत मारता है। नटवर यहाँ भी एक खेल खेलता है और बताता है कि मीना का खून अब्दुल कसाई ने किया है और पैसा गोवर्धन दास ने दिया था। सक्सेना विकी को बताता है कि उसके पिता का किडनैप हो गया है और ये भी बताता है कि उसके पिता उसके गम में शराब भी पीने लगे हैं।
गोवर्धन के अड्डे पर राय साहब अपने सारे पेपर्स उन बिजनेस पार्टनर्स के नाम कर देते हैं ताकि वो अपने बेटे से मिल सके। तभी विकी वहां आता है और सबकी जम के धुलाई करता है। तभी नटवर वहां आकर गोली चला देता है और गोली विकी के कंधे पर लगती है। पुलिस यानी अनवर आकर सबको गिरफ्तार कर लेता है।
विकी पेपर्स अपने डैडी को सौंपता है।
विकी, विकी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बेटे।
अपने बेटे को पहचानने में आपने बहुत देर कर दी डैडी, मेरे लिए तो सारी जिंदगी आप एक ऐसी तस्वीर बने रहे जिसके चारों तरफ सोने चांदी का फ्रेम लगा था, बीच में दौलत का शीशा था। हमारी मुलाकात तो कभी हुई नहीं।
नहीं बेटे, अब वो दौलत का शीशा टूट चुका है।
मैं भी टूट चुका हूँ डैडी, टूट चुका हूँ। ये रही आपकी अमानत, बस और सब मैं जीना नहीं चाहता डैडी।
नहीं बेटे, ऐसा ना बोल बेटे, तू जिएगा, तेरे लिए जिएगा, अपने बाप के लिए जिएगा।
नहीं डैडी, मुंशी जी इस दुनिया में नहीं रहे, मीना भी चली गई, मैं जीऊं तो किसके लिए जीऊं डैडी।
विक्की बाबू, मीना बहन यहाँ है।
विक्की,
विक्की बाबू, मैं माफी चाहता हूं, मुझे मजबूरन मीना बहन को मारने का नाटक करना पड़ा। आपने मेरे बेटे की जिंदगी बचाई थी, तो फिर मैं आपकी जिंदगी कैसे छीन सकता था। मैं कसाई जरूर हूं, लेकिन जल्लाद नहीं।
तभी अब्दुल कसाई वहां आता है और मीना को विक्की से मिलवाता है, और इस तरह से ये कहानी खत्म होती है।
हम बंदे हैं प्यार के, मांगे सबकी खैर, हाँ अपनी सबसे दोस्ती नहीं किसी से बैर।